बताया जाए।
इस बात का पूर्ण ध्यान रखें।
महाराज की जय हो।
कहो सैनिक, क्या संदेश लाए हो?
महाराज, महर्षि विश्वामित्र दो राजकुमारों के साथ जनकपुरी की फूल बगिया में पधारे हैं।
ये तो बड़ी खुशी की बात है कि महर्षि इस शुभ अवसर पर पधारे हैं। ऋषिवर, ये साधारण बालक तो प्रतीत नहीं होते, ये तो राजकुमारों जैसे दिखते हैं। कृपया कर इनका परिचय बतलाएं।
राजन, ये चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये राम हैं और ये उनके लघु भ्राता लक्ष्मण हैं। इन दोनों को मैं यज्ञ की रक्षा हेतु अपने साथ ले गया था।
जी ऋषिवर, ये तो और भी अच्छा हुआ महाराज। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी की हुई प्रतिज्ञा अब पूर्ण होगी। अब हमें जाने की आज्ञा दें ऋषिवर।
प्रस्थान करें राजन, प्रस्थान करें।
प्रणाम मुनिवर।
हे कुमारी, फूल तो पूजा के लिए होते हैं और हम अपने गुरुजी की पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं।
हे राजकुमार, आप कौन हैं और किस देश से पधारे हैं?
हे देवी, हम राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये हमारे बड़े भ्राता कौशल्यानंदन राम हैं और मैं इनका अनुज लक्ष्मण हूँ। हम अयोध्या से आए हैं।
हमारे स्वामी मेरे प्राण आधार, सिया थाल से फूल गिराए के रामचंद्र ने किया स्वीकार, राम चरण में जनक लली ने अपना मन दिया।
मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं आपसे एक वरदान मांगती हूँ। जब प्रभु राम भगवान शिव के धनुष को उठाएं, तब वह धनुष फूल जैसा हल्का हो जाए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है माँ। तुझसे क्या कहूँ, मुझसे तो कुछ कहा भी नहीं जा रहा।
क्या हो गया राजकुमारी जी, आप मुझे बताना नहीं चाहती?
दासी, आज मैंने दो राजकुमारों को बाग में देखा है, तब से मेरा मन बड़ा व्याकुल है। मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, ना जाने क्यों आज मेरा मन बड़ा व्याकुल है।
हे राजकुमारी जी, सब देवी माँ पर छोड़ दीजिए, माता सब संभाले।
मंत्री जी।
जी महाराज।
धनुष यज्ञ की घोषणा की जाए।
जो आज्ञा महाराज। जनकपुरी में देश देश से आए हुए राजाओं का स्वागत है, सम्मान है। जैसा कि आप सभी लोगों को राजपत्र के द्वारा सूचित कर दिया गया था कि जो वीर पुरुष भगवान शिव के इस धनुष को उठाएगा और इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, राजा जनक उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करेंगे। तो एक एक करके आइए श्रीमान, और इस धनुष को उठाने का प्रयत्न कीजिए।
धनुष तुम लोगों से नहीं उठेगा। इसे तो सिर्फ लंकेश्वर ही उठा सकता है। ना जाने तुम लोगों को जनक ने यहाँ क्यों बुलवा लिया है। अरे इस धनुष को तो मैं एक हाथ से उठाऊंगा। लगता है मुझे दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। अरे दुराचार्य, हंस रहे हो, हंस लो, लेकिन मैं भी आज इस सभा में एक प्रण करता हूँ कि एक बार सीता को लंका अवश्य दिखाऊंगा। ये रावण का वचन है।
बड़े क्रोध में राजा रावण चला गया, दिल में पछता।
हे राजन, आपकी बातें मेरे हृदय में क्रोध उत्पन्न करती है। भैया अगर आज्ञा दें तो ये धनुष क्या, मैं सारी पृथ्वी पलट सकता हूँ।
शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ।
उठो राम और भगवान शिव के धनुष को उठाकर जनकराज के प्राण का मान रखो।
बधाई हो राजकुमारी जी, बधाई हो।
क्या हुआ दासी?
अवधपुर के राजकुमार ने धनुष को उठाया और उसमें प्रत्युंचा चढ़ाई और उसे खींचकर तोड़ दिया। राजकुमारी जी, तोड़ दिया।
हे माँ गौरी, ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ माँ।
रण पूरा हो गया, जनक का पूरण हो गए है अभिलाष। जितनों से नहीं उठा धनुष था वो सब राजा भय निराश। हुक्म सुनाया फिर राजा ने, मंत्री सुनो मान विश्वास, राज महल में जल्दी जाओ। लेवासिया को लाओ खास, मंत्री पहुँचे राज महल में।
मंत्री जी, क्या संदेश है?
महारानी जी, आपके लिए एक बहुत ही शुभ संदेश लेकर आया हूँ। अवध के राजकुमार ने धनुष को तोड़कर महाराज का प्रण पूरा कर दिया है।
हे भगवान, आपने मेरी मनोकामना पूरी कर दी।
महारानी जी, आप तुरंत ही राजकुमारी को लेकर राजभवन पहुँचे। व्याकुलता के साथ महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
दासी, दासी
जी। महारानी,
राजकुमारी को जल्दी लेकर आओ, हमें अति शीघ्र राजभवन पहुंचना है।
जो आज्ञा महारानी।
महलों से निकली महारानी संग मिसिया सहेली संग, हाथों में वरमाला लिए है आ। राम दर्श की लगी उमंग, चली दासियां आगे आगे। मन में रह रहे उठे तरंग, पहुंची राजभवन के अंदर। जहां खुशियों का बरसे रंग, आज तलक जिनने
महाराज की जय हो।
कहो सैनिक, क्या बात है?
महाराज, जमदग्नि पुत्र परशुराम आए हुए हैं, वह बहुत क्रोधित से दिखाई दे रहे हैं।
सैनिक, उन्हें सम्मान सहित अंदर लेकर आओ।
जो आज्ञा महाराज।
राम जुलम दिया है ढाई, जिसने तोड़ा शिव की धनुष को, करी सामना मुझसे आए, नहीं तो जितने छत्री बैठे आज बचेंगे जिंदा नाए, नहीं तो जितने छत्री बैठे।
बताओ मुझे, शिव के धनुष को तोड़ने का किसने दुस्साहस किया है? आज वो मेरे फरसे की धार से नहीं बच सकेगा।
ए बाबा, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? ये फरसा दिखा के किसे डरा रहे हो? अरे ये तो पुराना धनुष था जो मात्र हमारे छूने से टूट गया। लगता है बहुत प्रिय था आपको ये धनुष।
अरे मूर्ख बालक, तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है। इस धरती को मैंने 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया है। लगता है तेरा भी वध मेरे ही हाथों से लिखा है।
परशुराम की बातें सुन के लक्ष्मण जी को आया ताव, कहने लगे सुन लो बाबा, ज्यादा हमसे ना बतला, ब्राह्मण जान तुम्हें मैं छोड़ू, नहीं तो मुझसे बचना पाओ, मारे होंगे क्षत्रिय आपने, हमसे बल ना अजमाओ। लक्ष्मण की सुन सुन के बातें, परशुराम के गुस्सा आए, दौड़े पड़े लेकर के फरसा, बोले राम चरण सिर नाए, करो क्षमा अपराध हमारा, स्वामी मन में बोधि लगाए, मैं अपराधी नाथ आपका, खड़ा सामने शीश झुकाए, मैं अपराधी नाथ आपका।
तुमने किया है।
हे स्वामी, आप तो घट घट को जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। हम तो नाधन बालक हैं प्रभु, और बालकों से गलती होती रहती है। प्रभु, इस अपराध के लिए जो भी दंड हो मुझे दीजिए, मेरे अनुज को नहीं।
छोटा भाई कटु वचन के बाण चलाता है, और बड़ा भाई मीठी बोली बोलकर मन को लुभाता है।
रामचंद्र से कहने लागे परशुराम जी धर के ध्यान, अगर धनुष तोड़ा है तुमने, एक पल में लूंगा पहचान, ये लो धनुष चढ़ा दो डोरी, और साध दो इससे बाण, तब मैं मान जाऊंगा तुमको, तुम हो योद्धा वीर महान। सुनकर बाणी परशुराम की, गुरु चरणों का करके ध्यान, धनुष लिया है रामचंद्र ने, चार रखा है बाण, देखत रह गए परशुराम जी, टूट गया उनका अभिमान, ब्रह्मा जी ने कहा था उनसे, त्रेता युग में मिलेंगे राम, ब्रह्मा जी ने कहा था उनसे।
मैं जान गया हूँ कि आप ही हरि के अवतार हैं। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि दैत्यों का वध करने के लिए आप मानव रूप में अवतार लेंगे। हे राम, आज मैं आपको जानकर धन्य हो गया।
किंतु मुझे ये बतलाए स्वामी कि मैं इस बाण का क्या करूं? अगर मैंने तरकस से बाण निकाला है और प्रत्यंचा पे चढ़ाया है तो इसे उतारा नहीं है, बताइए इसे मैं कहां चलाऊं?
करो सम्मान, राजा दशरथ को बुलवाओ।
जी,
जी महाराज।
इसी समय अयोध्या को जाइए और सारा वृत्तांत सुनाकर राजा दशरथ को विवाह का निमंत्रण दीजिए।
महाराज की जय हो।
आइए मंत्री जी, स्थान ग्रहण कीजिए। क्या संदेश लेकर आए हैं?
महाराज, अयोध्या के लिए बहुत ही शुभ संदेश लेकर आया हूँ।
अच्छा, कहिए वो शुभ संदेश क्या है?
महाराज,
और मंत्री जी, आप राजा जनक जी से कहना कि हम अति शीघ्र वहां पधारेंगे।
जी महाराज।
और अपने पुत्रों का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ करेंगे।
जी महाराज। महाराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज,
ठीक है मंत्री जी, आप जनकपुरी प्रस्थान कर सकते हैं।
प्रणाम महाराज। प्रणाम मुनिवर।
मेरा नाम दूल्हा बनेगा।
सबसे पहले मैं इक्ष्वाकु कुलगुरु वशिष्ठ जी के चरणों को नमन करता हूँ।
आयुष्मान भव।
और कुल पुरोहित वामदेव जी के चरणों में नमन करता हूँ। इसके बाद राजा दशरथ मेरा प्रणाम स्वीकार करें और अवधपुरी से आए सभी प्रजाजनों को मैं जनक शत शत प्रणाम करता हूँ। जनकपुरी में आप लोगों का स्वागत है। विराजिए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए।
विराजिए गुरुवर।
जल्दी से जाकर मेरी दोनों बेटियों को लेकर आओ।
जी महाराज। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, आप दोनों को महाराज ने अभी राजमहल में बुलाया है।
ठीक है, हम पहुँचते हैं। चलें। आपने हमें बुलाया।
मांडवी और सुखकीर्ति, आज मैं बहुत खुश हूँ।
क्या बात है पिताश्री, हमें भी बताइए।
जनकपुरी चलना है, सबको संदेशा भेजे महाराज, अभी तैयारी कर चलने की। मंत्री जी को दे आवाज, जल्दी रथ मेरा सजवा दो, सुंदर सेना संग दुसाज, सज धज करके चले जनकपुर, सर पर बंधा मणि का ताज, यहाँ की बातें यहीं पर छोड़ो। जनकपुरी का कहता हाल, गुरु वशिष्ठ जी देख रहे हैं, तिथि मुहूर्त गुड़ बेठार, दोनों कुल का मेल झोल हो, और विवाह शुभ हो तत्काल, गुरु वशिष्ठ ने शोध मुहूर्त, पोथी से फिर लिया निकाल, गुरु वशिष्ठ ने शोध मुहूर्त।
महाराज जनक और महाराज दशरथ, विवाह के लिए यह समय अति उत्तम है। अगले दो दिन फाल्गुनी नाम के नक्षत्र हैं महाराज, इनमें तो पहले दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र हैं महाराज, और दूसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हैं। इस मुहूर्त में विवाह संपन्न होना बहुत शुभ है महाराज।
सच गुरुवर, जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। हे महर्षि, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। गुरुवर, हम आपकी बात से सहमत हैं महर्षि, आज हमारे कुल का उद्धार हो गया। भ्राता कुशध्वज, अब विलंब ना करो।
राजन, विवाह संपन्न हुआ, अब आप इन वर वर वधुओं को आशीर्वाद प्रदान करें जिससे इनका कल्याण हो।
जो आज्ञा गुरुदेव। अखंड सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव, कल्याण हो, कल्याण हो।
आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव।
राजकुमारी जी, आप अयोध्या जाकर हम सबको भूल तो नहीं जाओगे?
नहीं सखी, नहीं।
राजकुमारी जी, आपकी बहुत याद आएगी।
जनक
अब आप हमें आज्ञा प्रदान करें ताकि हम अयोध्या के लिए प्रस्थान करें।
जैसे आपकी इच्छा महाराज।
प्रणाम महाराज।
आयुष्मान भव।
महाराज, मेरे पिता की बहुत इच्छा है भारत को देखने। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भारत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल दिखाने ले जाऊं।
यदि भारत और शत्रुघ्न जाना चाहते हैं तो आप उन्हें अवश्य ले जाइए।
जैसी आज्ञा महाराज। प्रणाम।
हे गुरुवर, अब ये राजपाट मुझसे संभाला नहीं जाता। सोचता हूं राम का राज तिलक करके मैं तपस्या करने के लिए वन में चला जाऊं। आपका क्या विचार है गुरुवर?
आपका विचार अति उत्तम है। वैसे भी राम आपका ज्येष्ठ पुत्र है राजन, तो क्यों ना उन्हें इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाए। और राजभार संभालने में तो निपुण ही है राजन। और मेरा विचार भी यही है राजन कि इस राजपाट को राम को ही सौंप दिया जाए।
गुरु वशिष्ठ की सुनकर वाणी दशरथ जी मन में हर्षा, मंत्री जी से बोले जल्दी, वामदेव को लाओ बुलाए, वामदेव जी के घर जाके। मंत्री बोले शीश झुकाए, संदेशा महाराज ने भेजा, जल्दी आप गुरहे बुलाए।
गुरुवर, मैं सभी के मतानुसार राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूं। कृपया आप कोई शुभ घड़ी मुहूर्त निकालकर बतलाइए।
सजाया क्यों जा रहा है जबकि कोई त्योहार भी नहीं है? ये फूल माला, ये तोरण क्यों लगाई जा रही है? अरे ये दासी, इधर आ। जी, राजमहल में क्या हो रहा है?
अरे आपको नहीं मालूम, आज राजकुमार राम का राजतिलक कर उन्हें युवराज पद पर आसीन कर रहे हैं।
अच्छा, अरे इतना बड़ा कार्य हो रहा है और मुझे नहीं मालूम। रानी कहके ही सो रही हो? सो, कुछ खबर है? उधर राम राजा बन रहा है और तुम्हारी नींद लगी है। ऐसे ही सोती रहो, तुम्हारी किस्मत भी सो जाएगी। उठो के कहीं उठो, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम पे विपदा पड़ने वाली है, उठ जाओ के कहीं उठ जाओ।
अरे मंथरा, अभी तो हमारी नींद लगी थी और तुमने रो रो के हमें जगा दिया। कोई अमंगल हो गया है क्या?
अरे महारानी, अमंगल हुआ नहीं, अमंगल ही अमंगल होने वाला है।
कुछ बताओ भी तो, क्या हो गया है?
आपको मालूम है वो महाराज क्या कर रहे हैं?
क्या कर रहे हैं?
अरे महारानी, कल महाराज राम को युवराज बना रहे हैं।
ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए।
कटुक बचन फिर बोली मंथरा, आँखियाँ भर अतवन की धार, तेरे साथ अन्याय कर रहे तेरे स्वामी प्राण आधार, भेजा भरत को मामा के घर, राम तिलक कर रहे धिक्कार, मैं तो चाहूँ तिलक भरत का, जिससे हो तेरा उद्धार। मंथरा की सुन कर के बातें बोली के कई है ललकार, अरे नीच पापन तेरे मन में कैसे कैसे भरे विचार, भरत राम में फर्क नहीं कुछ,
सोचा भी कैसे कि राम की जगह भरत का राज तिलक हो? तुझे लाज नहीं आई? आज राम का राज तिलक ना हो रहा होता तो तुझे तो राजमहल के बाहर निकाल दिया जाता। पर आज बहुत शुभ दिन है, इसलिए मैं तुझे माफ कर देती हूँ। जा, आज तुझे क्षमा किया।
तेरी मती गई चकराए, सोतन के बे
कैकेयी मेरी बात मान ले।
चुप हो जा मंथरा, चुप हो जा, नहीं तो मैं तेरी जबान खींच लूंगी।
अरे महारानी, आप मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी भूल कर रही हैं।
ऐसी बातें जो मेरे राम के विरुद्ध हो, क्या तू नहीं जानती? मेरा राम धर्म का ज्ञाता है, गुणवान है, जितेंद्रिय है, सत्यवादी है और पवित्र होने के साथ महाराज का ज्येष्ठ पुत्र भी है। उसे ही युवराज बनने का अधिकार है। अभिषेक की बात सुनकर तुझे इतनी क्यों जलन हो रही है?
देख जीव में गई सरस्वती जिसको ब्रह्मा का वरदान, अगर राम राजा बन गए तो जग का कैसे हो कल्याण, असुरों का फिर राज होएगा, धर्म ध्वजा होगी खेमान के कई की फिर मति घुमाने, बैठ कंठ में गई है
मंथरा, कुछ साफ साफ बताओ।
महारानी, मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। अगर राम राजा बने तो भरत को राज से बाहर निकलवा देंगे और वो महारानी कौशल्या तुम्हें भी राज से बाहर निकलवा देगी, इसलिए मेरा कहना मानो। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। थोड़ी देर बाद महाराज दशरथ आपके पास आने वाले हैं। उनसे भरत के लिए राज तिलक और वो राम के लिए मांगो बनवास।
मैं ऐसा ही करूंगी मंथरा, मैं ऐसा ही करूंगी।
यह मन मान गई के कई करने लगी विचार, कैसे भरत को राज दिलाऊं, कैसे राम बन जाए सिधार। इतनी सुन के कही मंथरो, रानी सुनो बताती सार, याद करो वो बात पुरानी, बैजंत नगर का युद्ध अपार, तीमी ध्वज असुर से राजा, लड़कर जब थक गए थे हार, उनके रथ के पहियों को तुम एक छिंगली से रही समार, तब राजा ने मार असुर को, पृथ्वी का दाव भार उतार, खुश हो कर के राजा ने तुमको विचार, खुश हो करके राजन तुमको।
रानी केकई, आज मैं आपसे अति प्रसन्न हूं। यदि आज आपने हमारे रथ के पहिए को नहीं संभाला होता तो वह दुराचारी दैत्य हमारा वध कर देता। रानी, आज आपके सहयोग से मैंने उस दुराचारी का वध कर दिया है। रानी,
स्वामी आपके प्राणों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है।
मांगो रानी मांगो, मैं आज अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें दो वर प्रदान करता हूँ।
खुश हो कहने लगी के कई, मुझको है पूरा विश्वास, देवर जब चाहे मांग लूंगी, स्वामी रहे तुम्हारे पास। इतनी सुन के अवधपुरी फिर किया निवास, आज वक्त आ गया महारानी, दोनों वर मांगो तुम खास, के कई चल दी कोप भवन को, अपना रूप बना विकराल, जितने पहने रही आभूषण फेंक दई सब सुनो निकाल, पलंग छोड़ कर धरनी ऊपर बैठी करके खुले वाल, राजा गए के कई के महलों, दासी से पूछत है हाल, राजा गए के कई के महलों।
प्रणाम महाराज।
दासी मंत्रा, हमारी प्यारी रानी केकई कहाँ है?
क्या बताएं महाराज, रानी बहुत दुखी है। कल संध्या से ही अन्न जल का त्याग कर दिया है।
अरे, इसकी सूचना आपने हमें पहले क्यों नहीं दी? इस समय रानी केकई कहाँ है दासी?
महाराज, महारानी जी तो कोप भवन में द्वार बंद करके बैठी है।
मुझे वचन दिया है और वचन देकर रघुवंशी पलटते नहीं हैं।
बोलो रानी बोलो, मैं राम की शपथ खाकर कहता हूँ, जो मांगोगी दूंगा। क्या चाहिए तुम्हें?
महाराज, मैं चाहती हूँ कि मेरा भरत युवराज बने और राम 14 वर्ष वनवास को जाए।
नहीं नहीं रानी, नहीं, ऐसा वर ना मांगो जिसे जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। नहीं महारानी, नहीं।
सुन के वचन के कई के राजा गिरे धरन में हो आधीर। आज राम का काज देख कर पापन तू बन गई बेपीर। तुझको प्यारा राज पाठे, मुझको प्यारे है रघुवीर। सब कुछ मैं तुझको दे दूंगा। राम रहे नैनन के तीर, उन्हें न 14 वर्ष में भेजू।
राजन, आप तो कहते थे रघुवंशी वचन देकर पलटते नहीं है, फिर आज मुझे वो दोनों वरदान क्यों नहीं दे रहे?
रानी, राम को वनवास ना भेजो, मैं भरत को युवराज बना देता हूँ। लेकिन लेकिन राम को वनवास नहीं भेज सकता महारानी। मेरे राम को वन को ना भेजो, मान जाओ महारानी। मेरी आंखों का तारा है मेरा राम, मान जाओ महारानी केकई। मेरे राम को मुझसे अलग ना करो महारानी। मेरे राम को वन्ना भेजो, मान जाओ महारानी, मान जाओ। राम मेरी आंखों का तारा है महारानी।
दासी से कहा, सुना जाओ दासी राज महल में।
राजकुमार राम की जय हो।
कहिए दासी, क्या बात है?
राजकुमार, महाराज ने आपको अभी इसी वक्त कोक भवन में बुलाया है।
ठीक है, उनसे कहिए हम अभी आके उपस्थित होते हैं।
प्रणाम राजकुमार।
क्या बात हो गई महाराज? महाराज कुछ तो कहें, आप दोनों इस तरह क्यों विलाप कर रहे हैं?
राम, बेटा राम, तुम्हारी माता केकई नहीं चाहती कि तुम युवराज बनो, इसलिए मैंने फैसला किया है कि भरत का राज तिलक होगा और तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास को जाना होगा। बस यही हरि की इच्छा है राम। जाओ राम, जाओ।
Yeah.